प्रिय विरहर्ष रोपिता प्रुविजम्भ तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलद्वदहन कौशले द्रोवतान लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ या मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री सद्गुरुदेव भगवान की
जय
वृंदावन धाम की
जय
श्री अयोध्या धाम की
जय
राजा रामचंद्र भगवान की
जय
वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की पूज्य महाराज जी की
जय
जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे
श्याम।
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री रघुनंदन राम की महती कृपा अनुकंपा के फलस्वरूप हमारे गुरुदेव श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी के 24वें वैकुंठ महोत्सव के उपलक्ष्य में पुण्य स्मरण में श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से हम आप सब लोग वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदो दयते विवेक। श्रीमद् भागवत के महात्म में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। और पूज्य महाराज जी ने इसका इतना सुंदर विश्लेषण दिया कि हमारे द्वारा किए गए कई ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिनका हम फल नहीं चाहते, उन्हीं पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ठाकुर जी हमको भागवत की कथा, रामायण कथा, वाल्मीकि राम कथा, इन सब कथाओं का आस्वादन प्रदान करते हैं। ऐसे सुंदर भाव युक्त पूज्य महाराज जी हमें मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। आज से रघुनाथ जी के विवाह महोत्सव की कथा है। हमारे ब्रजमंडल में आज रामलला जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा और विवाह उत्सव मनाने में बारात तो आनी चाहिए, तो आज अयोध्या से पूरी बारात पधारी है। तो हम सब वृंदावन वासी तो किशोरी जी के पक्ष के ही हैं और ये जितने भी यहाँ महात्मा विराजमान है ये सब श्री रघुनाथ जी के पक्ष के हैं। तो आज खूब आनंद से, खूब उल्लास से हम आप सब लोग श्री रघुनाथ जी का मंगलमय विवाह उत्सव मनाएंगे। आज श्री अयोध्या धाम से हम सब पर कृपा करने के लिए महेंद्र श्री अवधेश कुमार दास जी बड़े भक्तमाल जी छावनी अयोध्या से पधारे हैं, बारंबार प्रणाम। साथ ही रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज जानकी घाट अयोध्या से पधारे हैं, आप श्री जिस गादी पर विराजमान हैं उस गादी पर महंत श्री करुणा सिंधु जी महाराज हुए, जिन्होंने श्री मानस जी की सबसे पहली हिंदी टीका को प्रस्तुत किया, जो कि बहुत प्रमाणित उनकी टीका मानी जाती है। आप श्री भी पधारे हैं, बारंबार आपको प्रणाम। दास ने इसी 2020 में श्री नर्मदा कुंभ के उपलक्ष में बहुत सुंदर, बहुत विलक्षण एक आयोजन जबलपुर धाम में हुआ था। वहां भागवत की कथा करने का सौभाग्य मिला, वहां समस्त संत पधारे, वहां पूज्य श्री महाराज जी भी पधारे थे, आप श्री के दर्शन वहां हुए थे, आज पुनः आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। साथ ही अब बारात आई है, हनुमान जी नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है? श्री रघुनाथ जी की बारात में हनुमान जी तो वैसे तो महाराज जी थे, वैसे कथा के अनुरूप वैसे तो शायद नहीं थे, लेकिन आज की इस बारात में हनुमान जी भी पधारे हैं। हमारे अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी के पुजारी जी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज भी पधारे हैं, उनको बारंबार प्रणाम। एवं समस्त संत वृंद जो अयोध्या धाम से पधारे हैं, सबके चरणों में बारंबार प्रणाम और श्री ब्रज धाम में खूब खूब स्वागत। पूज्य महाराज जी के मुखमंडल से कथा श्रवण करें उससे पूर्व हम अयोध्या से पधारे दोनों महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वे हम सब ब्रजवासियों को अपनी वाणी से कृतार्थ करें, अपनी वचनामृत से हमारे पूज्य गुरुदेव की स्मृति महोत्सव में अपनी वाक् पुष्पांजलि अर्पित करें। पूज्य महाराज जी,
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की
जय,
अयोध्या नाथ की
जय,
हनुमान जी महाराज की
जय,
सरजू महारानी की
जय,
चारों भैयन की
जय,
चारों महारानी की
जय,
चारों दुल्हा की
जय,
चारों दुल्हन की
जय,
जनकपुर धाम की
जय,
जनक जी महाराज की
जय,
जनक के भाई की
जय,
जनक के जमाई की
जय,
वृंदावन धाम की
जय,
जय जय श्री सीताराम। सीतानाथ समारंभम रामानंदाचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन के ना सही विघ्न अनेक गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए भक्तोक्सल भगवान की
जय।
व्यासपीठ पर विराजमान परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य पद प्रतिष्ठित डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, जो हमारे अयोध्या के परम विद्वान मनीषी हैं, कथा के साथ साथ वैदिक वाङ्मय का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे जगतगुरु जी हमारे बगल में बैठे हुए अयोध्या की सिद्धपीठ जानकी घाट बड़ा स्थान, जो मधुर उपासना का प्रमुख केंद्र है, रसिक पीठाधीश्वर जी स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज, हमारे नागा राम लखन दास जी मंजुल दास जी महाराज और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री ठाकुर जी महाराज, जिनकी कथा हम लोग आज जब आने की चर्चा चल रही थी तो मैं बार बार स्मरण कर रहा था 25-30 साल पहले की, जब मैं बालक ही था, गोरेदाऊ जी में आया करता था श्री वैष्णोदास जी महाराज के। वैसे वृंदावन में जीवन में पहली बार 1974 में यहाँ हरिद्वार कुंभ की बैठक थी, उस बैठक में मैं आया था उस समय मैं स्वरूप बनता था महाराज जी। उसके बाद जब वृंदावन आना हुआ तो शायद भागवत कथा का जीवन में जो कुछ भी रस मिला वो श्री ठाकुर जी के द्वारा उसी नीम के वृक्ष के नीचे गोरे दाऊ जी में मैंने श्रवण किया वहां और कई बार सुना उन्हीं के दिव्य कथा श्री अवध धाम से पूज्य ठाकुर जी श्री कृष्णचंद जी ठाकुर जो यहां के वृंदावन के अभी तो देश विदेश में भागवत कथाकार के रूप में जो विख्यात हैं प्रख्यात हैं उन्होंने ये कार्यक्रम पूज्य जगतगुरु जी का रखा। और हमारे जगतगुरु जी मैं आपको निवेदन करूं ऐसा सरल ऐसा सहज ऐसा विद्वान सारे गुण संपन्न जगतगुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज हैं जो हम लोगों के मध्य में बड़े अब मैं उनके लिए क्या कहूं मित्र भाव सखा भाव आचार्य भाव तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भाव है ऐसा भाव रखने वाले जगतगुरु जी वास्तव में हमारे अयोध्या की निधि के रूप में डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज इस समय वर्तमान में हैं। और वृंदावन धाम में जो कथा हो रही है अद्भुत कथा मैं तो कार्यक्रम मेरे भी कार्यक्रम स्वामी जी करते रहते हैं खुद के भी कार्यक्रम होते हैं तो मैं बहुत सी कथाओं को सुनता हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की कथा में कुछ विशेष रस ही चढ़पड़ करके आ रहा है। ये बिहारी जी जाने कि ये विशेष रस कहां से आ रहा है और वैदिक भांगमय के साथ में रसिक परंपरा का भी पूर्ण निर्वाह रसमय कथा है। लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण कौन सुने कैसे सुने समझ में नहीं आता है रामचरितमानस की कथा मानस की कथा को बड़ छोट कात अपराधू लेकिन हमारे जगतगुरु जी इस वाल्मीकि रामायण को जितना इसमें रस भर सकते हैं जितना रस भर सकते हैं उतना अधिक से अधिक रस भर करके हम सबके बीच में परोस रहे हैं। ऐसे जगतगुरु जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं नमन करता हूं ऐसे आचार्य को। वृंदावन धाम में रामायण की कथा और भागवत कृपा कुंज में हो और स्वामी जी इस प्रकार की व्याख्या करें वृंदावन धाम में अयोध्या में हमारे यहां विद्वानों की आपके पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विद्या भास्कर जी महाराज जगतगुरु रामानुजाचार्य जी वो उद्गत विद्वान हैं हमारे अयोध्या के नहीं मैं तो पूरे संपूर्ण भारत में उनके जैसा विद्वान नहीं और उन्हीं के कृपा पात्र स्वामी जी हैं। लेकिन स्वामी जी जो रस हम सबके बीच में इस राम कथा के माध्यम से राम कथा जगत कल्याणकारी और गोस्वामी जी ने तो लिख दिया बेनी कवि ने भारी भव सागर उतार तो कवन पार जो पे रामायण तुलसी न गावो तो हम सब का उद्धार कल्याण मंगल कैसे होता असंभव था हम सब के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने और उस मार्ग पर आज देखिए वाल्मीकि रामायण का श्लोक अगर व्याकरण नहीं पढ़ा है विद्वान नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है तो वाल्मीकि रामायण का श्लोक पढ़ पाना संभव नहीं होता। लेकिन बिना पढ़ा लिखा एक गांव का हरवा हर चलाने वाला ठेला चलाने वाला रिक्शा चलाने वाला वह भी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी ये पाठ करके अपना कल्याण करता है अपने पूर्वजों का कल्याण करता है और सुनने वालों का भी कल्याण करता है। ऐसी दिव्य राम कथा मंगलमय कथा हमारे ठाकुर जी ने आयोजित की। हम सब तो इस समय विवाह का प्रसंग चल रहा है अयोध्या में विवाह की घर घर मंदिर मंदिर सब जगह विवाह की लीला का शुभारंभ हो चुका है। कई मातृ पूजन हो रहा है, मठमंगला हो रहा है, मटकौर हो रही है, क्या क्या सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। और ये वचन दे दिए थे कि वृंदावन धाम में जितनी देर बन सकेगा आएंगे और ठाकुर जी के भी दर्शन करेंगे, इंद्रेश जी के भी दर्शन करेंगे, ब्रजवासियों के दर्शन करेंगे और दर्शन करके हम लोग अवश्य आएंगे। इसीलिए हम सब चल करके पूज्य महाराज जी तो कह रहे थे कि महाराज जी कल रामायण मेला का शुभारंभ होना है, आज आप चल रहे कैसे आएंगे। मैंने कहा भाई वचन दे दिए हैं स्वामी जी को, अब तो वृंदावन चलेंगे ही चलेंगे। कल हम लोग 2 बजे अयोध्या धाम से चले और श्री वृंदावन धाम के रात्रि में आके दर्शन किए, आज गिरिराज जी के दर्शन किए। तो अवलोकत अपहरत विषादा कामद गिरवे राम प्रसादा, मन नहीं माना तो विचार हुआ गिरिराज जी चल के दर्शन करते हैं। गिरिराज जी के दर्शन करके आए, प्रणाम करके आए और आज आप सबके बीच में कथा में उपस्थित हैं। पूज्य गुरुदेव की 24वीं पुण्यतिथि, जिनकी परंपरा में दीक्षित हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज उस परंपरा का पालन करते हुए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की 24वीं पुण्यतिथि की स्मृति महोत्सव ये मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रति पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और उनके आशीर्वाद से ही हमारे ठाकुर जी देश विदेश सर्वत्र भागवत की ध्वजा को लेकर के धर्म की ध्वजा को फहराते रहे। ऐसे पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन है, प्रणाम है कि गुरुदेव इसी प्रकार से जो अपना शिष्य परिकर तैयार किए उस सनातन धर्म के लिए ध्वजा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हमारे इंद्रेश जी आज भी भागवत की कथा को, मैंने व्यास जी की रामायण की भी कथा सुनी है, रामायण की कथा भी व्यास जी बहुत अच्छी कहते हैं ठाकुर जी, मैंने इनके मुंह से भागवत तो सुनी थी, रामायण की कथा भी 2-1 मैंने सुनी, बड़ा आनंद आया। ऐसी दिव्य कथा यहाँ पर हो रही है, मैं इस कथा के प्रति आयोजक प्रायोजक सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ और भगवान श्री सीताराम जी से दूल्हा सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि ये मंगल करण कली महलारण तुलसी कथा रघुनाथ की, ये जो मंगल करण कथा है और ऐसा ही नहीं श्री रघुवीर विवाह जैस प्रेम गाँव में सुने तिनका सदा उछा मंगल यातन राम जसु, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा। जो इस विवाह का गान करेगा, सुनेगा, गाएगा, आनंद लेगा, उसके घर में सदैव मंगल ही मंगल होगा। ऐसा मंगल हमारे ठाकुर जी के यहाँ सदैव होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामना करते हुए जगत गुरु जी के सभी ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को विराम, जय सियाराम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम सार्वभौमाय मंगलम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परमाध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अनंत श्री श्री सीताराम जी, श्री मां के बिहारी भगवान जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, मंचस्थ अनंत श्री समलंकृत व्यास पीठासीन जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, इस आयोजन को मूर्त रूप देने वाले अनंत श्री समलंकृत श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत बड़े भक्तमाल जी महाराज, स्वामी श्री अवधेशदास जी महाराज, आयोजन की रीढ़ बने, समीक्षा के साथ संलग्नता स्वामी श्री व्यास इंद्रेश जी महाराज, नागाराम लखनदास जी महाराज, मानस मंजुल जी महाराज, सनातन जी, रसिक श्री संतोष शरण जी, हमारे सभी आचार्य व्यास संगीताचार्य यहां समुपस्थित, सभी भगवत कथा के प्रेमी श्रोता वृंद, सज्जन वृंद, सुहृद वृंद, सम्माननीय श्रद्धा माता एवं बहनों, अभी हम आप अनंत श्री समलंकृत बड़े भक्तमाल जी महाराज जी के श्री मुखारविंद से समग्र पक्ष का प्रतिपादन भी श्रवण कर रहे थे, आशीष वचन श्रवण कर रहे थे, कोई पक्ष आपने छोड़ा नहीं। भगवान की कथा जीव के जीवन को मंगल प्रदान करने वाली मंगल प्रदायिनी है।
मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की।
भगवान की कथा ही मंगल प्रदायिनी है, इसलिए अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे।
ये यही कथई स्नेह समेता कही है सुनी है समुझी सचेता होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो सुनत गावत कहत समुजत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई।
समग्र दृष्टिकोण से अभी हमारे श्री इंद्रेश जी महाराज कह रहे थे कथा की फलश्रुति।
भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत्रिमोहमदान्धकार नाशं विदाय तद्दोदयते विवेक।
इसी का प्रतिपादन गोस्वामी जी ने कर दिया।
जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये यही दरस परस समागमाधिके पाप राशि नसाइये।
बाल्मीक तुलसी भय तुलसी राम प्रसाद बिंदु गाद्याचार्य अनंत श्री समलंकृत स्वामी राम प्रसादाचार्य जी महाराज जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वाल्मीकि जी श्री राम जी के अवतरण के पूर्व ही श्री वाल्मीकि रामायण की रचना करके मार्ग प्रशस्त कर दिए और वही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी ने मानस में भगवान श्री राम जी के अवतरण के बाद पांच लीलाओं की उल्लेख किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज लीला। लेकिन सब जनकपुर वाले ही हैं। यहां श्री इंद्रेश जी ने कहा सब ब्रजवासी वृंदावन धाम के सब जनकपुर, और यहां तो श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव की जो सामंजस्यता है, विवाह की इतनी उतावली होती है ना, विवाह श्री सीताराम विवाह तिथि 19 तारीख को है, 2 दिन बाद, लेकिन अब विवाह आज से ही शुभारंभ हो गया और श्री ब्रज से जनकपुर और जनकपुर से श्री अवध की जो परिधि है वो विवाह महामहोत्सव में सब समाहित और सम्मिलित हो गया। श्री राम जी के विवाह अनंत श्री समलंकृत डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पराशर जी का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। विवाह महोत्सव में जब इंद्रेश जी है, ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी हैं, तो समग्र ठाकुर जी के साथ में जितने देवता थे सब विवाह महोत्सव में जनकपुर में आ गए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। आचार्य जी सारे देवता जनकपुर में विराजमान हो गए, उसी परिधि में और उसी श्रृंखला में सभी महान महान विभूतियों का जो दर्शन हो रहा है, ये श्री विवाह महोत्सव की गरिमा महिमा है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, सिय राम विवाह जेस प्रेम गावई सुनई तिनकह सदा उछा मंगलायतन राम जस। समग्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन श्री सीताराम जी के विवाह में हुआ। वैसे तो श्री सीताराम जी के विवाह और बांके बिहारी जी का तो विवाह कहीं युद्ध करके कहीं हरण करके अपहरण करके सब हुआ, लेकिन बांके बिहारी जी और श्री सीताराम जी में और श्री राधा कृष्ण जी में कोई भिन्नता नहीं है। दृष्टिकोण भक्तों की समग्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन दोनों से संपादित हो जाता है, इसलिए श्री सीताराम जी का विवाह और श्री राम जी का विवाह मैं निवेदन कर रहा था। श्री रामचरित्र मानस में राम कथा में बाल लीला विवाह लीला वन लीला रण लीला और राज लीला मामा जी श्रीमद नारायण जी महाराज मामा जी को नहीं जानत है जग में, उन्होंने जनकपुर के भाव से तो ही बाल विवाह बाल लीला और विवाह लीला का ही प्रतिपादन जो जनकपुर के वासी करते हैं उसी की संपादन उसी की पुष्टि श्री मामा जी ने किया कि ज्योतिषाचार्य के रूप में भोले बाबा ने महारानी कौशल्या जी को बाल श्री राम जी के भविष्यवाणी में बतला दिए। बालापन जब लो तब लो खेलेंगे नयन आगे होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे असुर संहारी मुनि कारज संवारी मग गौतम त्रिया को तारी जग जस पावेंगे जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी जनक दुलारी को विवाह घर लावेंगे। बहुत दिना अवधपुरी में आनंद करें आगे के बात हम फिर कभी बतावेंगे। बाल लीला और विवाह लीलाओं की समग्र चर्चाओं से अवगत करा दिए और भोले बाबा भी कह रहे हैं आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। तो इसी श्रृंखला में समग्र आनंद की जो समग्र परिधि होती है वो इस समय इस कथा सत्र में समाहित हो गई है, उसका परमानंद की अनुभूति करते हुए आगे के सत्र में हम जुड़ेंगे। एक मिनट में दो बार भगवत राम का संकीर्तन कर लें। श्री सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम।
और श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी भी कथा श्री अवध में सुनाए हैं, और हमारे श्री डॉक्टर पराशर जी श्री किशोरी जी के दरबार में जो कथा सुनाए वो भी अब अत्यंत आह्लादित करने वाली। मैं पुनः पुनः आग्रह करूंगा कि फिर वो सुअवसर आवे अगले सत्र में कुंभ के बाद। अभी तो कोरोना पुरोना क्या क्या सब वायरस फैल रहा है, ये समग्र वायरस हमारे श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के श्री मुखारविंद से जो आनंद वृष्टि अमृत वृष्टि हो रही है कथा सत्र की, इससे सारे कोरोना के वायरस समाप्त हो जाएगा। इस मानसिकता के साथ आगे हम सत्र में जुड़े और आचार्य श्री मुखारविंद से दिव्याति दिव्य सांगित्यमयी साहित्यमयी लालित्यमयी सरकारी हाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ गोरखपुर गोरखनाथ जी को भी श्रवण कराए डॉक्टर साहब श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज प्रथम सत्र में गोरखपुर में जहाँ मुख्यमंत्री आदि सभी लोग व्यवस्था में थे वहाँ दिव्याति दिव्य कथा सुधार स्पान करा के कोरोना को ही से भगाना शुरू कर दिए। अब श्री धाम में आ गए तो यहाँ बाकी बिहारी जी के वैसे ही बांसुरी बजती रहेगी और कोरोना भक्ता रहेगा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया।
परमानंद हम आप सब लोगों को प्राप्त हुआ। आज श्री रघुनाथ जी के विवाह महोत्सव में मानो बराती के रूप में सब अवध धाम से पधारे हैं। सब संत जनन को सब बरातीन को हमारी तरफ से प्रणाम है। आप सब पधारे और आज श्री धाम वृंदावन से हम पर कृपा करने के लिए परम पूजनीय डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज आज आपको प्रस्थान करना है बाहर, लेकिन दास की इच्छा थी कि आज विवाह उत्सव है तो मैंने कल निवेदन किया कि आपको थोड़ी देर का भी समय मिले तो आप पधारें। आज आप पुनः पधारे हैं और इच्छा है कि आप जावे से पूर्व आप एक बधाई तो रघुनाथ जी को जरूर श्रवण करा के जाएं। आपकी सुंदर आपकी वो प्रस्थान का समय कितने बजे है? 7 बजे ट्रेन है, तो अगर अभी आप यदि मंच पर पधारे और थोड़ी नेक ठाकुर जी को अगर अपनों मुखमंडल को रस स्वादन पान करा देंगे तो फिर ये है कि जैसे रसगुल्ला अभी दिख ही रहे बस हमें, मुंह में पानी तो आ गया है लेकिन वह रसगुल्ला को आप खवा ही जाओ, तो बाकी चाशनी और बढ़िया बढ़िया मिष्ठान और सब चीज वो हाँ आप मंच पर बधा रहे हैं ऊपर ही जाओ। और साथ ही हमारे मध्य में हमारे पुराने घर के पड़ोसी भी हैं और भागवत के बड़े अच्छे विद्वान भी हैं, श्री यदुनंदनाचार्य जी महाराज पधारे हैं, उनको प्रणाम। रामायण के अद्भुत भक्ता श्री अशोक व्यास जी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। श्रीमद् भागवत के अद्भुत प्रवक्ता एवं पिता तुल्य प्रेम रखते हैं श्री अशोक व्यास जी भी पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। आप सब लोग शांति से विराजे रहें। श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज अपनी वाणी से श्री रघुनाथ जी को, श्री किशोरी जी को, और एक भाव यह है महाराज जी कि हम वृंदावन वाले किशोरी जी के पक्ष के हैं, तो हमारो पक्ष ही आप रखियो। हाँ, तो आपसे निवेदन कि आप अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें, आनंदित करें। जय
बुद्धुल्हा सरकार की
जय।
श्री अयोध्या धाम की
जय।
श्री मिथिला धाम की
जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल
की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता, हर हर महादेव। कैसी अद्भुत अनुपम झांकी का दर्शन हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि विवाह महोत्सव की तैयारी है। अवध के बराती साधु संत कैसी दिव्य शोभा से समलंकृत दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की तरह दिव्य विभूतियां विराजमान हैं। पूज्य महाराज श्री के हाथ का कंकन कैसा झिलमिला रहा है। तो ऐसा लगता है कि पूरी बारात की तैयारी में पूज्य श्री पधारे हैं, और हम तो मैथिल रस के ही उपासक हैं, और यहां से जो प्रस्थान हम कर रहे हैं वो विवाह महोत्सव में ही सम्मिलित होने के लिए पूज्य सरकार का जो जन्म स्थान पौड़ी धाम, पौड़ी धाम में जन्मोत्सव मनाकर फिर मैहर में ही कथा 20 तारीख से प्रारंभ है, उसी विवाह पंचमी के अवसर पर। तो लगता है कि विवाह महोत्सव का आनंद यहीं से प्रारंभ हो गया। तो हमारे पूज्य सरकार गुरुदेव का प्रेम वल्लरी नाम के ग्रंथ से जो दूल्हा सरकार की दिव्य शोभा का वर्णन है, उसी के एक पद से सेवा करते हुए इस विवाह महोत्सव में अपने मन को समाहित करते हैं। हमारे सिया के पिया कितने सुंदर हैं, और उनकी दिव्य दूल्हा छवि पर मिथिलानियों की क्या मनस्थिति बन रही है, उसका चित्रण इस पद में है। जय हो। तो उस झांकी का हम लोग मिथिलानियों के भाव में सम्मिलित होकर के आस्वादन करें। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। हो नख सिकते सर्वांग युगल छवि, 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 लोचन लो भाए जाए रे, हाँ लोचन लोल लो भाए जाए रे, ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की जो कुटिल कुंतल केश हैं, वो घुंघराली अलकावली कदाचित खुल करके कपोलों पर लहराती है, तो नागिन की तरह उसकी दिव्य शोभा होती है। तो जैसे नागिन डसले तो हालत विचित्र हो जाती है, तो सरकार के वो घुंघराले केश भी नागिन की तरह दृष्टि से डस लेते हैं।
ओ छोड़ कपोलनी अलक नगनिया, अलग नगनिया अलग नगनिया,
अंग अंग मोर अंग अंग मोर दसाए छ। अंग अंग मोर साए जाए रे हाँ,
अंग अंग मोरे साए जाए रे,
सिय पिय प्यारे की मुरतिया,
मने तो लुभाए जाए रे,
सिय पिय प्यारे की मुरतिया,
मने तो लुभाए जाए रे,
सिय पिय प्यारे की जाए रे, सिय पिय प्यारे की मुरतिया,
मने को लुभाए जाए रे।
ओ बावरी दई बनाए करो का, बनाए करो का बावरी दई बनाए करो का,
बावरी भई बनाए करो क्या,
बावरी दई बनाए करो का,
बावरी भई बनाए करो क्या,
और बिच कहर मचाए जाए रे हाँ, और बिच कहर मचाए जाए रे, ओ सिय पिय प्यारे की मुरतिया, मन को मुहाए जाए रे,
सिय पिय प्यारे की मुरतिया, मन को लुभाए जाए रे,
ओ दुल्हा प्यारे की मन को मुहाए जाए रे,
दुल्हा प्यारे की लुभाए जाए रे,
ओ नेह कटारी काट सही जग,
नेह कटारी काट सही
जग, नेह कटारी काट दई जग,
नेह कटारी काट दई जग,
भव की भीति छुड़ाए जाए रे हाँ,
भव की भीति छुड़ाए जाए रे,
ओ सिय पिय प्यारे की
जाए,
ओ बाहुन प्यारे की सुरतिया,
हर क्षण अमृत सिंधु निमज्जत हर क्षण अमृत श्री हर क्षण अमृत सिंधु निमज्जत श्री हर क्षण अमृत सिंधु निमज्जन आनंद अधिक अघाए जाए रे
आनंद अधिक अघाए जाए रे
ओ सिय पिय प्यारे की मुरतिया मन को मुहाए जाए रे
सिय पिय प्यारे की
बोल दुल्हा सरकार की
जय
पाहुन प्यारे की
जय
जय जय श्री सीताराम
अद्भुत आनंद पूज्य महाराज जी के श्री मुख से ये पद दास ने तो भागवत की कथा में सुना तो रुक्मणी प्यारे की सूरत या मन को लुभाए जाए रे ऐसा सुंदर भाव और आप श्री तो भावुक हो गए गाते गाते अब लाल जी हैं ही ऐसे और दोनों जब संग खड़े हो जाएं किशोरी जी और लाल जी तो फिर तो नेत्रों से अश्रुबिंद सहज ही बहते हैं पूज्य महाराज जी की एक बार पूज्य आपसे जब जोधपुर में मिलना हुआ तो आपने एक बहुत सुंदर भाव बताया इतना वो भी राम विवाह उत्सव ही था और वहां का भाव सुन के ही दास के हृदय में शायद रघुनाथ जी ने ये प्रेरणा दी कि अब कथा इनसे कराओ और वो भाव कौन सा था जोधपुर में आप श्री प्रवचन कर रहे थे तो आपने एक भाव कहा कि देखो श्री जनकपुर में जाकर के रघुनाथ जी ने जो धनुष तोड़ा वो कैसे टूट गया कहां बड़े बड़े बाहुबली और बड़े बड़े अभी आप विस्तार से पूरा सुनाएंगे सबने इतना प्रयास किया लेकिन वो कोई धनुष नहीं तोड़ पाया नन्हे से राम जी जो कि आप बता रहे 12 वर्ष के ही थे उन्होंने एक बार में उठा करके धनुष भंजन कैसे कर दिया तो मिथिला में एक परंपरा है कि यदि कोई भी सुंदर वस्तु को मिथिला के लोग देखते हैं तो फिर वे कोई तृण तोड़ते हैं कि हमारी कहीं नजर ना लग जाए हमारे ब्रज के एक पद में किशोरी जी कहती भी हैं तो पे दारू तृण तोड़ हे कन्हैया तेरे मुखमंडल को देख के तो पे दारू तृण तोड़ बन नाचे नतनी को आली नंद को किशोर तो रघुनाथ जी ने जैसे ही जनकपुर में जाकर के सिया जी को देखा श्री किशोरी जी को देखा तो किशोरी जी को देख करके रघुनाथ जी का हृदय व्याकुल हो गया कि कहीं हमारी नजर किशोरी जी को ना लग जाए और हमारी नजर लग गई तो किशोरी जी कहीं अस्वस्थ ना हो जाए तो जल्दी कोई तृण ढूंढ रहे थे लेकिन वहां कोई तृण ना ढूंढ करके तृण ना मिलने पर धनुष ही हाथ पड़ा तो रघुनाथ जी ने वो तोड़ दिया तो ऐसा सुंदर भाव मिथिला का है कि भैया किशोरी जी को नजर ना लग जाए राम जी की इसलिए राम जी ने धनुष तोड़ा ऐसे सुंदर भाव में हम लोग अभी निमज्जन करेंगे पूज्य समस्त संत वृंद एवं हमारे अत्यंत प्रिय श्री पाराशर जी महाराज ने खूब कृपा करके आज आनंदित कर दिया अब हम मंचासीन श्रीमद् जगतगुरु डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज जी के चरणों में विनती करेंगे निवेदन करेंगे कि वे अपने सुंदर मुख से अपने सुंदर भावामृत हम सबको हाँ सब विराज अपने सुंदर भावमय वाणी में हम सबको आनंदित करें पूज्य महाराज जी आप सब लोग सावधानी से विराजें
नारायण। श्री सीता रामचंद्र भगवान की
जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की
जय।
श्री हनुमान जी महाराज की
जय।
श्री वाल्मीकि भगवान की
जय।
श्री वेदव्यास भगवान की
जय।
सत्य सनातन वैदिक धर्म की
जय।
जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोराब्रणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीषं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। शाण्डिल्याहुयवंशमारितुविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणम् श्रीराधाकान्तस्मरणम् सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः सन्तपूर्वाचार्यास्सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की
जय।
श्री हनुमान जी महाराज की
जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की
जय।
श्री वाल्मीकि भगवान की
जय।
श्री वेदव्यास व्यास भगवान की
जय।
श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की
जय।
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की
जय।
सब संतन की
जय।
सब भक्तन की
जय।
जय जय सीता राम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान के विवाह की मंगलमयी चर्चा आज के सत्र में हम सभी लोग अनुभव करेंगे।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की कथा के सुरक्षित श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, परम श्रद्धेय वैकुंठवासी पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज जो दिव्य रूप से आज भी हमारे आपके मध्य में विराजमान हैं, ऐसे आचार्य चरण जिनकी 24वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम सभी लोग समवेत होकर आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित विश्वविख्यात श्रीमद्भागवत महापुराण एवं श्री रामकथा के महान उद्गाता आचार्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी, उनके चिरंजीवी श्री इंद्रेश कुमार जी कथा में आज की कथा में अपनी वाणी से रस का वर्षण करने वाले पूज्य श्री हर्षण सरकार जी के कृपा पात्र श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, इन महापुरुषों की कथा को सुनकर के ही दास बोलना सीखा है। आज मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है, कभी कभी अपनी पीठ स्वयं थपथपा लेनी चाहिए। तो इस भाव से मैं कहता हूं कि विद्यार्थी जीवन में पूज्य पाराशर जी आप सबकी कथा होती थी तो हमारे जैसे बालक वहां जाकर के कुछ डायरी लेकर के नोट करते थे, कुछ अनुभव करते थे। आज भगवान की ऐसी कृपा कि इन महापुरुषों के सन्निधि में अपनी वाणी को पवित्र करने का मंगलमय शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज की कथा में विराजमान अयोध्या से पधारे परम श्रद्धेय श्री बड़े भक्तमाल जी की छावनी के पूज्य महाराज श्री जानकी घाट बड़ा स्थान श्री करुणा सिंधु जी की वो पवित्र पीठ, पूज्य महाराज श्री ने ही श्रीमद् रामचरितमानस की प्रथम व्याख्या लिखी श्री करुणा सिंधु जी महाराज, उस पीठ के आचार्य पूज्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज एवं सुंदरवन स्थान के महंत श्री सनातन जी महाराज, हनुमानगढ़ी अयोध्या के नागातीत श्री रामलखनदास जी महाराज एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, ब्रजधाम के आचार्य व्यास जी महाराज सब विराजमान हैं, सभी के चरणों में प्रणत निवेदन पूर्वक आगे भगवान के पावन चरित्र में हम लोग प्रवेश करें। आज ऐसा सुमंगल अवसर, इतने महापुरुष विराजमान हैं, श्री राम जी का विवाह महोत्सव भी पंचमी परसों है, राम जी का विवाह महोत्सव, और भगवान ऐसा विवाह भगवान का किसी अवतार में नहीं हुआ, किसी अवतार में नहीं। कहने के लिए तो श्री कृष्ण अवतार में 16108 विवाह हुए थोक भाव में, 16100 तो एक ही बार में, लेकिन किसी भी विवाह में कन्हैया को भी यह सौभाग्य नहीं मिला कि सारी सरहज गीत गावे, व्यंग वचन सुनावे, दुल्हा की आरती उतारें। ये सौभाग्य तो हमारे रघुनाथ जी को मिला, बड़े गौरव से मैं कहता ये सुख तो हमारे रघुनाथ जी को मिला, और भी किसी अवतार में भगवान का विवाह ऐसा नहीं। और जितने अवतार हैं, मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार, मछली कछुआ का कौन ब्याह करेगा भैया, सीधी सीधी बात। नरसिम्हा अवतार बोले, नरसिम्हा अवतार में तो जो पहले से ब्याही हैं लक्ष्मी, वो भी सामने आने को तैयार नहीं है, साक्षात श्री प्रेषिता देवी ही वेदव्यास जी के स्त्री जी आई और नरसिंह भगवान के उस भयंकर रूप को देखकर गर्जंतम गर्जयंतम निजभुजपटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिशदिशत्तम संरभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम करनिकर सतैर्दिव्य सिंहम नमामि। उस भयंकर रूप को देखकर भगवती भी उल्टे पांव लौट गई। वामनावतार में बोले, वामनावतार में तो विवाह का प्रस्ताव रखा राजा बलि ने, लेकिन वामन भगवान को तो अपनी लीला करनी थी, इसलिए कोई प्रसंग ही नहीं आया। तो किसी भी अवतार में भगवान का ऐसा अद्भुत विवाह नहीं, विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का। हमारे अवध के संत कहते हैं कि सच पूछो तो ये लीला श्री रामावतार विवाह के लिए ही हुआ, ये अद्भुत बात है। विवाह के लिए क्यों हुआ? हमारे पूज्य श्री आचार्य जी, श्री आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज अपने उद्बोधन में कहते थे कि एक दिन भगवती महालक्ष्मी जगत में सृष्टि में भ्रमण करने के लिए आई तो देखा महाराज, क्या देखा? बोले, लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे, मैरिज एनिवर्सरी। तो लक्ष्मी जी जब लौट करके बैकुंठ पहुंची तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में सब आनंद है, सब उत्सव है, लेकिन हमारा आपका कोई विवाह महोत्सव नहीं मनाता। तो भगवान ने कहा, ये बात तो है, हमारा आपका विवाह महोत्सव कोई नहीं मनाता, क्योंकि हम सनातन दिव्य दंपति हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी काल में भगवान का नारायण का विवाह लक्ष्मी से भया हो, उसके बाद कोई उत्सव मना ले, वो तो सनातन दिव्य दंपति हैं। बोले, इसीलिए नहीं होता। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हमारा भी आपका भी विवाह महोत्सव मनाया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा, अब इसके लिए तो बैकुंठ में ये लीला नहीं होगी, इसके लिए धरामंडल पर चलना पड़ेगा। बोले, कहां चले? बोले, आप भी चल करके प्रकट हो कहीं और हम भी प्रकट हो, हम दोनों का विवाह हो, तब आने वाली पीढ़ियां विवाह महोत्सव मनाएंगी और प्रतिवर्ष हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती रहेगी। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि फिर भगवती प्रकट हुई जनकपुर में और भगवान अयोध्या में प्रकट हुए, विवाह हुआ, तब से आज तक प्रतिवर्ष भगवान का विवाह महोत्सव मनाएगा। तो मुख्य रूप से तो मानो विवाह लीला के लिए ही भगवान का यह अवतार हुआ, रसिकों को परम आनंद प्रदान करने के। हमारे पूज्य श्री पाराशर जी ने भगवान की जो झांकी प्रस्तुत की, किसी अपिय प्यारे की मूर्तियां, ठाकुर जी की प्यारी ये मूर्ति जो भक्तों के मन को मोह लेती है, भगवान का त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, इसका एक प्रयोजन यह भी है कि भक्तों के मन को भगवान अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि रूप सन्नहनम लक्ष्मीम सौ कुमारियम सुवेशताम। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही भगवान के जब सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि रूप सन्नहनम लक्ष्मीम सौ कुमारियम सुवेशताम। भगवान के सौ कुमारिय को देखकर, इनकी सुकुमारता को देखकर, रूप सन्नहनम रूप को देखकर, लक्ष्मीम लक्ष्मीम का मतलब इनके दिव्य लक्षणों को देखकर, दंडकारण्य के जितने मुनि महात्मा थे वो भी सब व्यामोहित हो गए। भगवान का सौंदर्य ही ऐसा है। श्री वेदव्यास जी तो यहां तक लिखते हैं कि पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहान्। भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नारी भावापन्न हो गए। उन महात्माओं के, उन विरक्त अमलात्मा महापुरुषों के मन में भी ये भावना उत्पन्न हो गई, हा हंत, व्यर्थ में विधाता ने हमको पुरुष बना दिया, अगर हम नारी होती तो ऐसे सुंदर कमनीय पुरुष का वरण कर लेती, ये मेरे प्रियतम हो जाते। ऐसी उदात्त भावना, इसको सौंदर्य की पराकाष्ठा कहते हैं। किसी नारी के सौंदर्य को देख करके कोई नारी पुरुष भावापन्न हो जाए और किसी पुरुष के सौंदर्य को देख करके कोई पुरुष नारी भावापन्न हो जाए, यह उसके सौंदर्य की पराकाष्ठा स्वीकार की जाती है साहित्य शास्त्र में। और ऐसा सौंदर्य तो केवल रघुनाथ जी का है। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः राम रूपम हरिम दृष्ट्वा भोक्तुमैक्षन् सुविग्रहम्। भगवान के सौंदर्य को देख करके उन महर्षियों के मन में यही भावना उत्पन्न हुई कि ये मेरे प्रियतम होते, और हा प्रिय, हा प्राणवल्लभे, ऐसा कह करके मुझे अपने हृदय से लगा लेते, जन्म जन्मांतर की हमारी हृदय की वेदना, हृदय का ताप मिट जा। श्री रघुनाथ जी त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान। भगवान श्री रघुनंदन जिनकी मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर के चरणों में हमारी भक्ति हो, ये कई कई जन्मों के पुण्य का परिपाक होता है। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी भगवान में जीव की निष्ठा दृढ़ होती है। बड़ा कठिन है ये, एक जन्मों की साधना नहीं महाराज। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि तीन जन्मों तक जब जीव प्रजापति की आराधना करता है, त्रिभिर प्रजापतेर भक्तः, तीन जन्मों तक प्रजापति की आराधना करता है व्यक्ति, सप्तभिः शंकरस्तु यः, सात जन्मों तक भगवान शंकर की आराधना करता है, विंसत्यग्नींद्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, और 20 जन्मों तक इंद्र और अग्नि की आराधना करता है, तब भगवान श्री नारायण, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण में उसकी निष्ठा उत्पन्न होती है। ये अनेक जन्मों के परिपाक का फल है। परम तत्व की अनुभूति साधारण तपस्या का फल नहीं है, नहीं तो संसार में बड़े प्राणी हैं लेकिन कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर, ठाकुर की इन लीलाओं में किसका मन लगता है। ये तो अनेक जन्मों की साधना का फल है कि भगवान में हमारी मति लग रही, ये अनेक जन्मों के कर्मों का सुकृत का फल है। और उसमें भी निष्काम भाव से भगवान की मंगलमयी लीलाओं को सुनकर के आनंद की अनुभूति, रस की निष्पत्ति, यही कथा का फल है। कथा हमारे हृदय को भगवत रस से भर देती है, भगवत भाव से भर देती है, और भगवत भाव से जब हमारा हृदय भर जाता है, यही भवसागर से पार जाने का सबसे बड़ा महामंत्र है।
भव सागर चहबार जो पावा भव सागर चहबार जो पावा राम कथा ता कह देड़ावा राम कथा
भव सागर से पार जाने के लिए भगवान की कथा दृढ़ नाव है। राम कथा ताकह दृढ़ नाव, ये दृढ़ शब्द पर एक बार ऐसे ही दास का विचार चला, लेकिन उस समय कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन बाद में एक बार पढ़ते पढ़ते उपनिषद का एक मंत्र मुझे मिला, जिस मंत्र में उपनिषद में अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति रिष्यते, वहां पर अविद्या की जब निम्नता बताई गई उपनिषद में, तो वहां पर कहा गया कि अदृढ़ा येते प्लवा यज्ञ रूपा। वहां पर श्रुति कहती है, वेद कहता है कि अदृढ़ा येते प्लवा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो नाव है, बड़े बड़े यज्ञों को करके जो लोग स्वर्गादि लोकों की कामना करते हैं, तो यज्ञ रूपी नाव को, कर्म रूपी नाव को जो लोग साधन बना करके भव सागर से पार जाना चाहते हैं, वो यज्ञ रूपी और कर्म रूपी जो नाव है वो क्या है? बोले अदृढ़ है, कमजोर है। तब मुझे अनुभव हुआ कि गोस्वामी जी ने इसी अर्थ में कहा कि दृढ़ता तो भगवान की भक्ति में, राम कथा ताक दृढ़। वहां पर श्रुति कहती है कि अदृढ़ा एते प्लवा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी जो नाव है ये अदृढ़ है, इतनी कमजोर है कि कब डुबो देगी कोई ठिकाना नहीं। अष्टादशोक्तम ह्यवरम हेश कर्म, वहां पर मंत्र में कहा गया कि 18 लोगों के द्वारा किया गया ये जो कर्म है, ये व्यक्ति को पार लगाने वाला नहीं। 18 कौन? बोले 16 ऋत्विज और एक जजमान और एक जजमान की पत्नी, 18 लोगों के द्वारा मिलकर के किया गया जो क्रतु होता है, बड़े बड़े यज्ञ सोम यागादि, उन यज्ञों को करने के बाद भी जीव संसार सागर से पार होगा ये तय नहीं है, क्योंकि वो सब नाव अदृढ़ है। दृढ़ नाव तो भगवान के चरणों की भक्ति है, भगवत चरणानुराग है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के ही जीव संसार सागर से पार हो सकता है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने सुना, श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे। विश्वामित्र जी आए, श्री दशरथ जी महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया, भोजन प्रसाद पवाया, चारों कुमारों को चरणों में लाकर के प्रणाम करवाया, पुनि चरणन मेले सुतचारी। और विश्वामित्र जी ने राम जी को जब देखा तो विश्वामित्र जी भी सुदबुद भूल गए, अपलक नेत्रों से भगवान के सौंदर्य माधुर्य का पान कर रहे थे। दशरथ जी महाराज ने कहा कि महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप आज्ञा करें। दशरथ जी के व्यवहार से, उनके शिष्टाचार से, उनके द्वारा किए गए सम्मान बहुमान से श्री विश्वामित्र जी महाराज का रोम रोम हर्षित हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृहिष्ट रोमा महातेजा, महान तेजस्वी श्री विश्वामित्र जी महाराज हृष्ट रोमा, उनके रोम रोम हर्षित हो गए। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभाषत, और स्वामित्र जी अब बोलने लगे। और सबसे पहले स्वामित्र जी ने क्या कहा? सबसे पहले अपने उद्बोधन में विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की प्रशंसा की, महाराज आप बड़े महान हो। संसार में कोई हो नहीं सका, सदृशं तव सानृशार्दूल सदृशं राजशार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके समान तो इस पृथ्वी पर कोई राजा हो नहीं सकता और आज तक हुआ भी नहीं। तवैवं भुवि नान्यतः, क्यों? तो विश्वामित्र जी कहते हैं दो दृष्टियों से। एक तो आपकी वंश परंपरा इतनी विशुद्ध और पवित्र है, महावंश प्रसूतस्य, एक कारण बताया। आप ऐसे महान वंश में उत्पन्न हुए हैं जिस वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, और प्रतापी राजा ही नहीं, धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान के भक्त हुए। इक्ष्वाकु का कुल साधारण नहीं है। श्री गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में एक जगह पर कहा है, वो स्थल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, श्री गोविंद राज स्वामी जी ने कहा कि प्रश्न उठाया कि अयोध्या में बड़े बड़े पृथ्वी पर बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन भगवान श्री नारायण ने दशरथ जी के घर में ही अवतार लेने का विचार क्यों किया, ये प्रश्न उपस्थित किया। और भी तो धर्मात्मा राजा थे, जनकपुर के भी राजा महाराज जनक थे, वहां पे भी भगवान अवतार ले सकते थे, तो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी को ही अपना पिता बनाने का संकल्प भगवान ने क्यों किया। पितरम रोचयामासो तदा दशरथम नृपम। तो वहां पर श्री गोविंद राज स्वामी जी ने यही कहा कि ये वंश इतना पवित्र वंश है महाराज, श्री मनु जी महाराज से लेकर के श्री दशरथ जी के